ओम शांति। बाबा के प्यारे मधुबन से आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरी याद और शुभकामनाएं। तो आज आपसे कुछ ऐसे सुनहरे विशेष अनुभव शेयर करेंगे कि बाबा के घर में आने वाले रहने वाले जो भी आत्माएं यहां आती रही उनको जीवन के अंदर ऐसे बहुत सी अद्भुत प्राप्तियां हुई जिसे हम कहेंगे कि सहज भी रही और साथ ही साथ उनकी लगन से उनके जीवन में उन्हें कहां से कहां तक पहुंचा दिया। तो ये जो सिंपल स्टेप्स सीक्रेट स्टेप्स ऑफ स्पिरिचुअल लर्निंग हैं, सिंपल भी हैं लेकिन उनसे जीवन में बहुत बहुत प्राप्तियां हुई। तो कुछ एक सुनहरे पल बचपन के और वर्तमान के भी आपसे शेयर करना चाहूंगी कि जब यादों की सुनहरी किताब को मैं अब खोलती हूं तो मैं उन सब पीछे के पन्नों में जहां बहुत सारी यज्ञ की हमारी आदि रतन महान आत्माएं प्रेरणा के स्रोत उनके जीवन से हमने क्या नहीं पाया वो सभी सिंपल सीक्रेट्स जिसे मैं अपने जीवन में यही समझती हूं कि सिंपल स्पिरिचुअल सीक्रेट्स आध्यात्मिक ऐसे राज जिन्होंने हमें जीवन के अंदर बहुत प्रेरणा दी। तो विशेष रूप से हम इन दिनों में दीदी मनमोहिनी जी को बहुत याद कर रहे हैं, उनका दिन बहुत नजदीक है। तो सबसे पहले कुछ एक सीक्रेट्स और उनकी प्रेरणाएं जो हमने उनसे सीखा बहुत बचपन में हम छोटे थे तो हमने देखा कि दीदी मनमोहिनी जी बहुत ही शालीन सरल और सादगी का व्यक्तित्व थी। कभी कभी हम अपने जीवन में जब दूसरों के साथ शेयर करते हैं तो कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हम किताबों में पढ़ते हैं, दूसरी बातें होती हैं जो हमें दूसरे सुनाते हैं वो भी प्रेरणा वाली होती हैं, लेकिन तीसरी बातें ऐसी होती हैं ऐसे उदाहरण होते हैं जिनके संग हम रहे उन्हें बहुत नजदीक से देखा और सहज रूप से वो हमारे जीवन के अंदर छाप बनकर रह गए। तो मैं ऐसे ही अंग संग के सीक्रेट्स अनुभव आपसे शेयर करना चाहती हूं कि दीदी मनमोहिनी जी की जो मुस्कुराहट थी जो सादगी थी और उनके जीवन में जो डिसिप्लिन था वो बहुत ही रिमार्केबल था। उनको देखते ही जीवन में बहुत सी प्रेरणाएं मिलती थी क्योंकि जब दीदी बोलती थी तो इतना मधुर बोलती थी और उनके चेहरे से बहुत शालीनता भी नजर आती थी, दृष्टि में भी वही उनकी जो शक्ति थी आने वाले को बहुत ही कम शब्दों के अंदर उन्हें बहुत सी प्रेरणाएं मिल जाती थी, जीवन के रास्ते मिल जाते थे, प्रश्नों के हल मिल जाया करते थे। ऐसी हमारी बहुत प्यारी मनमोहिनी दीदी जी के साथ बचपन से ही हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। मुझे वो दिन याद आते हैं कि दीदी जी जैसे खुद ही शांति शालीनता संयम और बैलेंस का प्रतीक थी तो वैसे ही वो चाहती थी कि मधुबन का वातावरण भी वैसा बना रहे। उन्हें ये भी पसंद नहीं आता था कि कोई बहुत जोर से बात करता है या जोर से हंसता है, ये भी हम नहीं देखते थे। उन दिनों में कि जैसे बैलेंस जैसे दीदी चाहती थी। मुझे याद है कि एक बार कुछ इसी प्रकार की आवाज दीदी ने सुनी तो दीदी जी ने खास बुलाया उसको, उस आत्मा को, और पूछा, क्योंकि वो जोर जोर से हंस रहे थे या कुछ ऐसी बात हुई होगी। तो ये एक बहुत बड़ी लर्निंग थी कि मधुबन के वातावरण में जो आत्माएं अभी आती है उन्हें कैसे इतनी शक्ति मिलती है, क्योंकि ये प्रेरणा मूर्त आदि स्तंभ, जो आधार स्तंभ उनके जीवन में ये बात थी कि कैसे हम मधुर बोले, शिष्ट बोले, कम बोले और धीरे बोले। साथ ही साथ इन्हीं आदि रत्नों के साथ हमारी पुरानी बहुत मीठी भोली दादी, जिन्हें बाबा बहुत याद करते हैं, यज्ञ को संभालने वाली विश्व रतन दादा, हमारे आनंद किशोर दादा, ये ऐसे बहुत सारे रतन मधुबन में हमने उनको देखा, उनसे पालना ली। भोली दादी जी, जिनको बाबा बहुत प्यार से याद करते हैं, मुझे याद है कि कभी भी कोई मेहमान चाहे कभी भी लेट भी आ जाए, उसको अगर भोजन की आवश्यकता है तो दादी जी खुद वहां ही, क्योंकि रहती ही भोली दादी वहां थी, और उसी समय खुद वो खुद तैयार करके देती थी भोजन। ये भी एक्सपेक्ट नहीं करती थी कि मुझे कोई आकर मदद करे उस समय। हाँ, कोई उनको देखकर उसी समय आ जाते थे, लेकिन वो खुद आगे बढ़ के उस आत्मा के लिए, चाहे वो कितना भी ग्रुप हो, क्योंकि उन दिनों में तो बहुत बड़े बड़े ग्रुप नहीं होते थे, छोटे ही ग्रुप होते थे, तो भोली दादी बहुत प्यार से उनको भोजन करवाती थी। अव्यक्त बाप दादा बहुत बार, क्योंकि भोली दादी बहुत गुप्त भी थी, इतनी सेवा कर लेती थी कि शायद कोई सोच भी नहीं सकता होगा कि इतनी सिंपल और इतनी शक्तिशाली आत्मा, उनके अंदर इतने विशेष गुण थे। तो अव्यक्त दादा उन दिनों में तो जैसे डेट्स आज की तरह फिक्स नहीं हुआ करती थी, तो जैसे अव्यक्त बाप दादा के जाने का समय होता था उस समय वो दादी जी को कहा करते थे कि भोली दादी जी को बुलाइए, तो खुद बाबा भोली दादी को बुलाते थे, उनको कई बार अपने हाथ से खिलाते थे। तो इस प्रकार भगवान खुद उनको याद करते थे। ऐसे ही हम विश्व रतन दादा को देखते थे, कैसे उनके जीवन में डिसिप्लिन, इतना डिसिप्लिन बहुत कम आत्माओं में देखने को मिलता था, कि मधुबन का वातावरण जो आज भी हर समय दूर बैठे भी आप सभी को इतनी प्रेरणा जो दे रहा है, इतनी शक्ति दे रहा है, उसके पीछे क्या सीक्रेट्स है। ये सभी सीक्रेट्स हैं कि इन आत्माओं ने अपने प्रैक्टिकल जीवन के द्वारा बहुत सारी शक्तियां भर दी। विश्व रतन दादा अपने बहुत नियम के पक्के थे, बहुत धीरे बोलते थे, शालीन थे, कम बोलते थे, और देखिए यज्ञ का कितना बड़ा कारोबार वो संभालते रहे। ऐसी गुप्त आत्माएं हमारे दादियां तो है ही हैं, आप सब जानते हैं कि दादी प्रकाशमणि जी के बहुत सारे अनुभव आप सुनते हैं। दादी जानकी जी भी अपने सीक्रेट्स में कहती थी, किसी ने उनसे एक बार पूछा कि दादी जी आप इतनी उम्र में भी कैसे एनर्जेटिक रहती हैं, आपको थकान नहीं होती है, आप बिना स्टिक के चलती हैं। तो दादी जी ये कहा करती थी कि बताओ मेरा सीक्रेट क्या है, मैं ना ये मधुबन के जो पांचों, इसको कहें ना बाबा के जो स्थान है, यादगार स्थान, उन सबका मैं चक्कर लगाती हूँ। मैं जो है शांति स्तंभ के चारों तरफ में चलती हूँ, तो जब मैं आंगन में चलती हूँ, चारों धाम का चक्कर लगाती हूँ, तो ये मेरा सीक्रेट है, इसीलिए मुझे थकान नहीं होती, मुझे स्टिक भी लेने की जरूरत नहीं होती, और मैं अपने आप को बहुत शक्तिशाली हमेशा अनुभव करती हूँ। तो इतनी जो शक्ति इनके जीवन में है, उनके प्रैक्टिकल जीवन से हमें मिलती रही, और साथ ही साथ जो सिंपल सीक्रेट्स जो बाबा के ज्ञान, जैसे संस्कृत में है ज्ञानेन साध्यते शक्ति, यानी कि नॉलेज इज पावर, विजडम इज पावर, कैसे वो ट्रांसलेट हो जाती है आध्यात्मिक सत्य और सीक्रेट्स, उसके पीछे ये भी बाबा की कई ऐसी जो प्रतिदिन बाबा मुरली में हमें बताते रहते हैं, लेकिन मधुबन, प्यारे मधुबन में आकर हम उसे सत्य होते हुए देखते हैं। कैसे वो बातें जो हैं होती हुई नजर आती है, असंभव बातें भी संभव होती नजर आती हैं। इसमें अगर हम देखें तो बाबा एक वाक्य को, ये भी एक बहुत बड़ा सीक्रेट है कि बाबा कई बार मुरलियों में ये बहुत गुहेर ज्ञान की बात हमसे शेयर करते हैं। वो ये बात है कि बाबा को आप दे दो अपनी बात, अपना बोझ अपना दे दो, ऑफर बाबा खुद करते हैं। ये भी जैसे कि एक एक्सचेंज ऑफर है बहुत बड़ी, कि मुझे अपना व्यर्थ, अपना कोई भी ऐसी बात मन की, वो हम बाबा को दे दें और बाबा एक्सचेंज में हमको वो सब देते हैं, चाहे हम शक्ति कहें, चाहे हम धैर्य कहें, प्रेम कहें। दुनिया वाले तो इन शक्तियों की चाहना रखते ही हैं, लेकिन हम अगर दूसरों को जीवन में कुछ देना चाहते हैं अपने जीवन से, तो भी बाबा देने पर हमें बहुत सारी शक्तियां हमें जीवन के अंदर दे देते हैं। लेकिन ये सीक्रेट का सिंपल स्टेप यही है कि हम बाबा को देने का दृढ़ संकल्प रखें। तो ऐसे हमें बहुत सारी बातें जब याद आती है, उसमें से एक बात मुझे याद आती है कि दादी प्रकाशमणि जी, हम बहुत छोटे थे, क्लास के अंदर, उन दिनों में तो हिस्ट्री हॉल में क्लास हुआ करता था, बाद में मेडिटेशन हॉल में जहां हम बैठे हैं। तो जैसे ही मुरली के अंदर ये पॉइंट आता था कि बाबा को लिख कर दो या बाबा के साथ शेयर करो कुछ भी ऐसी बातें, तीव्र पुशारत कैसे हो, कैसे हम आत्माएं शक्तिशाली बने, तो सूक्ष्म रूप से भी हमें देना है। तो जैसे जैसे ये पॉइंट दादी जी मुरली में सुनाते थे, और साथ ही साथ दादी जी कहते थे कि सभी को पेन और पेपर दे दो, तो उसी समय दादी जी सभी को लिखने के लिए कहती थी। पेन पेपर से सब लोग लिखते थे, और कोई भी बिना लिख के बिना, और उसी समय बॉक्स भी सामने रखवाया जाता था कि बॉक्स में डाल दें, तो उसी समय लिखकर देना, कोई भी ऐसी सूक्ष्म बात है, कोई कमजोरी है या कुछ ऐसी बात जो देनी है, जैसे कि जिसको बाबा कई बार लेट गो भी आज की भाषा में कहें, तो ये इतनी सुंदर आदत जो है बाबा ने, दादी जी ने, दादी प्रकाशमणि जी ने हमें जीवन में सिखा दी कि कितना समय लगता है लिख के देने में। और ये एक बहुत बड़ा सीक्रेट है कि जब हम लिखकर देते हैं तो लिखकर देने के अंदर वो बात को खत्म करने कई गुना शक्ति हमें मिल जाती है, और हम अपने आप को बहुत बहुत हल्का अनुभव करते हैं। साथ ही साथ एक और सीक्रेट जो है, वो सीक्रेट ये है जो हम सीखते आए और सुनते आए बाबा की डायरेक्शन से, कि करण करावन हार करा रहा है। मधुबन में हमने देखा कि कैसे हमारे सभी दादियां, वरिष्ठ दादियां, भाई बहने वो एक दृढ़ संकल्प के साथ रहे कि बाबा का कार्य है और बाबा कराएगा, तो हम करण हार हैं, बाबा करण करावन हार हैं। तो ये बात पॉइंट तक नहीं, लेकिन वास्तव में खुद करके उन्होंने दिखाई कि बाबा कैसे जीवन के अंदर हर कार्य को करा देता। हमें अभी भी याद है कि उन दिनों में जब ओम शांति भवन बन रहा था, तो किसी वजह से मजदूरों की कमी हो गई, तो दादी जी ने सभी को कहा कि हमें हाथ से पत्थर उठाने हैं, और पूरी लाइन बन गई मधुबन से लेकर ओम शांति भवन। तो ऊंची पहाड़ी पे बन रहा था, वो काफी बड़ी चट्टान थी, तो हम सब भी छोटे छोटे बच्चे सभी लोग लाइन में, और दादी प्रकाशमणि जी भी उसी लाइन में, और पत्थर एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को ऐसे पास करते करते उस लाइन में दादी जी खुद खड़े होते थे। तो आप सोच सकते हैं कि ये कार्य कितना शीघ्र होने लगा, लेकिन उसका उसकी वजह उसका एग्जाम्पल क्या रहा कि दादी जी खुद करके दिखा रहे थे। और ये देखिए आज ओम शांति भवन में चाहे मधुबन में या सभी जो भी बाबा के यादगार स्थान हैं वहां आकर आत्माएं जो विशेष अनुभव करती उसकी वजह क्या है कि उसके कण कण के अंदर उसकी मिट्टी के अंदर दीवारों में वो सब शक्तियां जो है विद्यमान है। वैसे भी आबू को जो कहते हैं कि पर्वत आबू जो है तीर्थराज कहते हैं। मधुबन के चारों तरफ भी देखिए कहीं ना कहीं मंदिर हैं और उन मंदिरों में भी पुरातन समय से जो इतिहास है ऋषि मुनियों ने वहां पर बैठकर तपस्या की। बहुत नजदीक अधर देवी का मंदिर है जिसको अर्बुदा देवी कहते वो भी बहुत सुंदर इतिहास लिए हुए है कि कैसे वहां पर जो है खुद देवी प्रकट हुई। तो आप देखिए कि चारों प्रकार से चारों तरफ से वो शक्तियां जो है वो विद्यमान है। और ऐसा बाबा का स्थान कि बाबा करण करावनहार करा रहा है और हम आत्माएं करणहार है। तो बाबा को जब हम अपना हार दे देते हैं तो बाबा खुद कराना शुरू कर देता है। इसके बहुत सुंदर अनुभव हैं जीवन के अंदर। बस ये सोचिए कि हमने बाबा को दे दिया। आज भी हम खासकर व्यक्तिगत रूप से ये अनुभव है कि बाबा के कमरे में जब हम बैठते हैं और पूरे दिल से प्रेम से जब हम बाबा को याद करते हैं, जैसे कि आज की मुरली में भी था कि हमें मेहनत नहीं करनी है लेकिन बहुत दिल से बहुत प्रेम से बाबा को याद करना है, तो वो मेहनत वाली नहीं लेकिन मोहब्बत वाली याद। तो बाबा को जब इतने प्रेम से बहुत मोहब्बत से दृष्टि जब हम बाबा से लेते हैं तो बाबा के कमरे की जो बाबा के जो ट्रांसलेट है उसमें बाबा की आंखें बहुत बार मैंने बदलती देखी, जैसे कि बाबा दृष्टि दे रहे हैं एक बहुत तेज प्रकाश की किरणें उन नेत्रों से आंखों से जो है निकलकर हमारे तरफ पहुंचती। और कुछ क्षणों के बाद जैसे ट्रांसलेट में आंखें हैं वैसी नजर आती, लेकिन जब दृष्टि मिलती है तो वो पावरफुल दृष्टि एक सपोर्ट है, इस बात का हमें एश्योरेंस देती है कि बाबा स्वयं करण करावनहार हमें हर बात में मदद करने के लिए, हमें हर बात के लिए, हमारी किसी भी प्रकार के प्रश्न का उत्तर देने के लिए, चाहे जिस भी रूप में हम बाबा के सामने जाते हैं, लेकिन हमारा जितनी लाइन क्लियर होगी, जितना हम सूक्ष्म व्यर्थ से भी मुक्त होंगे, तब हम बाबा की सूक्ष्म टचिंग्स को और कैचिंग्स को हम बहुत अच्छी तरह से कैच कर पाएंगे। एक और भी बहुत सुंदर बाबा का जो सीक्रेट है वो ये है कि हमारे जीवन के अंदर चाहे हम जितने भी वरिष्ठ भाई बहनों को देखें, दादियों को देखें, एक तो विश्वास, और विश्वास के साथ साथ हम कहें कि जैसे कि हिंदी में एक आस्था शब्द भी आता है, क्योंकि आस्था एक भावना के साथ भी जुड़ा हुआ शब्द होता है, क्योंकि अगर भावना है ये ईश्वर हमारा कार्य कर देंगे तो वो कार्य जैसे कि हुआ ही पड़ा है। तो विश्वास जो है, भरोसा जो है, दृढ़ शक्ति जो संकल्प शक्ति है वो बहुत सुंदर कार्य करती है। अपने समय पर हर कार्य हमें जो है लगता है सहज ही हो रहा है। छोटी सी कहानी याद आ रही है कि एक भगत थे जो परमात्मा को बहुत प्रेम से याद करते थे। एक बार ऐसा हुआ कि वो एक ब्रिज क्रॉस कर रहे थे, तो जब ब्रिज क्रॉस करने लगे तो उन्होंने देखा कि वो जो ब्रिज था, वो पुल जो था, वो कई स्थानों से टूटा हुआ नजर आ रहा था। तो उन्हें लगा कि मैं भगवान को याद करता हूँ, वो मुझे मदद करेंगे, क्योंकि ये तो कई जगह से ब्रिज जो है, पुल जो है टूटा हुआ है। तो जैसे ही उन्होंने भगवान को याद किया तो उन्होंने देखा कि भगवान एकदम लास्ट जो कॉर्नर जहां ब्रिज खत्म हो रहा है वहां पर खड़े हुए थे और मुस्कुरा रहे थे। तो इस भगत ने कहा, आगे हाथ किया, भगवान आइए, आप मुझे मदद कीजिए, मुझे इस ब्रिज को क्रॉस करने के लिए मदद कीजिए। लेकिन उन्होंने देखा कि भगवान तो अपनी जगह खड़े हैं और वो तो आ नहीं रहे हैं, तो उस व्यक्ति ने अपने बड़ी मुश्किल से ब्रिज क्रॉस किया और क्रॉस करके जैसे ही वो भगवान के पास पहुंचे और कहा कि भगवान मैं आपसे मुझे शिकायत है, मैं आपकी इतनी भक्ति करता हूं और मैंने आपको इतनी बार कहा आइए मेरा हाथ पकड़िए मुझे ब्रिज क्रॉस कराइए, लेकिन आपने तो मेरी बात को सुना ही नहीं। तो भगवान उसको देख के मुस्कुराए और कहा देखो मैं पूरा ब्रिज ही तुम्हारे लिए पकड़ कर खड़ा हूं। और उस व्यक्ति ने तब रियलाइज किया तो वास्तव में जो ब्रिज था वो तो भगवान के हाथ में ही था कि वो इतना भी क्रॉस कर सके। तो उन्होंने क्षमा मांगी, कहा ईश्वर मैं आपकी मदद को समझ नहीं सका। तो इसीलिए अगर वो तो भक्ति की कहानी है, लेकिन बाबा भी जो है हमें कई रूप में कई प्रकार से हमें आकर मदद करते हैं, लेकिन अगर जरूरत है उस सीक्रेट को समझने की कि बाबा हमें कैसे किस रूप में कैसे किस व्यक्ति के द्वारा हमें हमारे कार्यों में मदद करते हैं, और उसके लिए जो जरूरत है एक बल एक भरोसा दृढ़ निश्चय, ये हमें मदद करता है। साथ ही साथ जो आगे हम अगर सीक्रेट देखें, सिंपल सीक्रेट्स हैं, कई बार हम सुनते हैं लेकिन हमारे जीवन के अंदर वो एक किताब के ऐसे सुनहरी पन्ने बन जाते हैं कि हमें उन्हें एक संचय के रूप में, जिसको कि कहते हैं आजकल की भाषा में डॉक्टर्स ये भी कह रहे हैं कि हम अपनी बहुत अच्छी मेमोरीज को जो है बार बार रिपीट करें, चाहे हम उसको अफर्मेशन कहें। तो आप देखिए कि बाबा के एक एक वाक्य में कहीं क्वेश्चन नहीं, आप सदा विजयी हैं, ये कार्य हुआ ही पड़ा है, ये सहज है, ऐसे कई वाक्य देखिए। आज तो उस पर रिसर्च हो रही है, ऐसे बहुत सारे रोगी, मैं आपको एक बात करते करते मुझे याद आ रहा है कि ग्लोबल हॉस्पिटल उन दिनों में खुला ही था, तो यहाँ के लोकल जो लोग थे, क्योंकि वो लोग तो बहुत बाहर बहुत दूर जाया करते थे ऑपरेशन कराने के लिए, तो उन दिनों में ऑपरेशन अभी शुरू ही हुए थे, तो यहाँ पर जो माउंट आबू के लोकल स्थानीय व्यक्ति बहुत सालों से यहाँ रह रहे, तो उन्हें डॉक्टर ने कहा कि आपको ये ऑपरेशन करवाना होगा। लेकिन इस व्यक्ति के मन के अंदर एक डाउट था, पता नहीं मैं कराऊं नहीं कराऊं, मेरा ऑपरेशन ठीक होगा कि नहीं ठीक होगा, ये बात उसके मन में थी। तो मेरा उससे मिलना हुआ तो मैंने उनको कहा कि देखिए सब आपका तो अच्छा ही हो जाएगा ऑपरेशन, आप क्यों चिंता करते हैं, आपको क्या करना है, क्योंकि हर कमरे के अंदर जो है हॉस्पिटल के सामने बाबा का पिक्चर लगा हुआ है। हमने कहा आप बाबा को देखिए, बाबा से शक्ति लीजिए, बाबा आपके साथ है, इसी निश्चय में रहे। तो उस व्यक्ति का ऑपरेशन बहुत अच्छा हो गया, और उसके बाद में जब उनसे मिलने गई तो मैंने उनको पूछा कि कैसा आपके, आप तो जैसे डर रहे थे कैसे आपने बाबा को याद किया, आप तो बहुत खुश नजर आ रहे। तो उसने रियलिटी बताई, उसने ये कहा कि मेरे मन में जो डर था, मैं डाउट था, तो ऑपरेशन की एक रात पहले मैं उस पिक्चर के, बाबा की पिक्चर के सामने देख रहा था, और उसी समय बाबा ने मुझे, ब्रह्मा बाबा ने सामने मुझे एक फूल दिया, और जब मुझे उन्होंने फूल दिया तो जैसे कि मेरे मन के अंदर से हर प्रकार का संशय दूर हो गया और मेरे अंदर एक नया विश्वास आ गया, मेरे अंदर एक शक्ति भर गई कि ये तो सब हुआ। और उन्होंने कहा मुझे तो पता ही नहीं चला। ऐसे बहुत सारे अनगिनत अनुभव हैं। और साथ ही साथ अगर हम एक सीक्रेट देखें कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम ये भी बात सुनते हैं कि कभी कभी हमें जैसे सुनने में आता है कि कुछ ऐसी बातें कोई व्यक्ति को उत्साहित करती हैं, कुछ बातें निरुत्साहित भी कर देती हैं। तो हर एक आत्मा का अपना रोल है। अगर कोई हमें निरुत्साहित करने वाली भी बात कहते हैं तो उन बातों को अगर हम मन के अंदर बार बार दोहराएंगे तो उसका प्रभाव हमारे जीवन पर होता ही होता, चाहे हम स्पिरिचुअल लाइफ में है, चाहे दुनिया में जिनको ज्ञान नहीं है वो भी इस बात को समझते हैं। तो बाबा के एक एक वाक्य में इतना बड़ा चमत्कार है कि वो वाक्य, आप उसी वाक्य को अगर हर बार दोहराते हैं मन में, जिसको कि मुरली में आज का मनन चिंतन, उसको अगर मनन चिंतन के रूप में हम लेते, साधारण नहीं, जैसे साधारण पढ़ लिया और सुना दिया वो एक अलग बात है, लेकिन मनन चिंतन के रूप में जब हम उसको लेते हैं तो वो जो बात है एक बहुत बड़ी शक्ति के रूप में कार्य करती है। बाबा का एक वाक्य अव्यक्त मुरली में, साकार मुरली में आपने कई बार सुना होगा, मधुबन में यहाँ हमें दादियों ने बहुत अलग अलग रूप से हमें वो बात पेश की, अपने अनुभव के द्वारा वो बात पेश की। तो उसमें ये कि हमेशा ये सोचो कि बाबा ने खुद हमें चूज किया है, करोड़ों आत्माओं में हमें बाबा ने चूज किया है, ये बात कितनी गर्व की है। बाबा ये भी कहते हैं कि बाबा की जो लिस्ट है, जो माला है, उसमें आप अपने आप को आगे समझिए, सबसे आगे। बाबा मुझे स्वयं याद करता है, देखिए तभी तो बाबा हमें नमस्ते करते हैं कितने प्यार से, दिल से। तो मेरा कई बार बहुत सारे देशों में जाना हुआ और बहुत बार बाबा के सेवा के विशेष निमंत्रण रहे, तो एक बात बहुत अच्छी लगी डबल फॉरेनर्स की, कि उनको हिंदी नहीं भी आती है लेकिन फिर भी जो बाबा का याद प्यार है, वो जिस ढंग से रिस्पॉन्स करते हैं, उनके चेहरे उसको देखकर ऐसा लगता है ही नहीं है कि उनको हिंदी नहीं आती, मीठे मीठे बच्चे। वो ऐसे बोलते हैं कि जैसे दिल से और स्वीटनेस से। तो हमें भी जब भी मीठे मीठे बच्चे हमें बाबा कहते, तो वो कड़वाहट को, किसी प्रकार की मन की बात को दूर करने का इतना बड़ा मंत्र है, मीठे मीठे बच्चे, प्यारे प्यारे बच्चे। तो ये भी हम अपने आप को रिमाइंड कराते रहें। तो मैं उसी बात पर आ रही हूँ कि कैसे बाबा कहते हैं कि अपना नाम जो है, अपने आप को वो श्रेष्ठ आत्मा समझो कि बाबा मुझे याद कर रहे हैं, मुझे आगे रखा है अपनी लिस्ट में, वो बच्चे जो बाबा के मददगार हैं। तो एक छोटी सी कहानी स्कूल में हम पढ़ते थे, अबू बेन आदम की। अबू बेन आदम छोटा बच्चा था, ज्यादा उम्र का नहीं था, और वो भगवान को बहुत दिल से याद करता था, प्रेयर करता था। एक बार उनके सपने में जो है वो एंजल आया और उसने देखा, जो एंजल था उसके हाथ में गोल्डन बुक थी और गोल्डन बुक में वो गोल्डन पेन से कुछ नाम लिख रहा था। तो अबू बेन आदम जो था उसी समय एंजल के पास गया, बहुत उत्साह से उसने एंजल को पूछा, तुम क्या कर रहे हो? तो एंजल ने कहा कि मैं इस बुक में उन लोगों के नाम लिख रहा हूं जो भगवान को याद करते हैं। तो ये एंजल जो था वो तो बहुत खुश हो गया, उसने कहा इस लिस्ट में तो मेरा नाम जरूर होगा, क्योंकि मैं तो भगवान को बहुत याद करता हूं, बहुत प्रेयर करता हूं। तो उसने पूछा, तो एंजल ने कहा कि इस लिस्ट में तुम्हारा नाम नहीं है। तो अबू बेन आदम जो था वो बहुत निरुत्साहित हो गया, डिस्करेज्ड हो गया कि इस लिस्ट के अंदर मेरा नाम ही नहीं है, मैं तो भगवान को बहुत याद करता हूं, वो बहुत उदास हो गया। कुछ दिन के बाद कहानी में इस प्रकार से है कि अबू बेन आदम को फिर से सपना आया, उसने फिर से एंजल को देखा, फिर से एंजल के हाथ में गोल्डन बुक थी और वो गोल्डन पेन से नाम लिख रहे थे। इस बार अबू बेन आदम एंजल के पास नहीं गया, क्यों? उसे पता था मेरा नाम नहीं है। लेकिन इस बार एंजल खुद अबू बेन आदम के पास आए और उसको पूछा, तुम जानते हो कि मैं क्या कर रहा हूं? तो उस छोटे बच्चे ने पूछा, अबू बेन आदम ने, हाँ आप तो लिस्ट लिख रहे हैं, नाम लिख रहे होंगे। उन्होंने कहा, इस बार मेरी लिस्ट दूसरी है। उसने कहा, कौन सी लिस्ट है? उसने कहा, ये मेरी लिस्ट वो लिस्ट है, ये लिस्ट विशेष है जिनको कि भगवान खुद याद करते हैं, ये मेरी लिस्ट है। तो उसने बच्चे को कहा, अबू बेन आदम को, कि दिखाया कि इस लिस्ट में तुम्हारा नाम टॉप पर है, क्योंकि तुम्हें खुद भगवान याद करते हैं। तो बहुत खुशी हुई अबू बेन आदम को कि मेरा नाम उस लिस्ट में है जिसे खुद भगवान याद करते हैं। तो हम भी अपने जीवन के अंदर सदा याद रखें कि बाबा ने हमें कौन सी लिस्ट में रखा है। हम बाबा के वो बच्चे हैं, वो विशेष आत्माएं हैं जिनको कि बाबा स्वयं याद करते हैं, स्वयं ब्लेसिंग देते हैं, स्वयं वरदान देकर हमें भरपूर करते हैं। ये एक बात बहुत सिंपल सी लग रही होगी, लेकिन ये बहुत बड़ा सीक्रेट है हमारे आध्यात्मिक ज्ञान का, हमारी प्रगति का, हमारे जीवन के अंदर छोटी मोटी सूक्ष्म कमियों को दूर करने का, कि कैसे जो है बाबा हमें खुद आगे रखते हैं। और वो तो हमारे ही हाथ में है, है तो छोटी सी बात कि बाबा कहते हैं कि सुबह उठो। एक बार गुलजार दादी जी मधुबन में क्लास करा रहे थे तो बहुत सुंदर बात उन्होंने शेयर की कि जैसे गुड मॉर्निंग हम बाबा को करते हैं तो कब करें, तो उन्होंने ये बात बताई कि गुड मॉर्निंग तो वही ही जब आंख खुल जाए, आंख खुलते ही गुड मॉर्निंग करनी चाहिए बाबा को। तो देखिए कितनी सहज और सीक्रेट बात कि दूसरा कोई व्यर्थ संकल्प भी हमारे मन में नहीं आएगा। कोई व्यर्थ संकल्प चाहे ना भी आए, लेकिन किसको गुड मॉर्निंग की, करण करावन हार जिसके कि कई टाइटल्स हैं, लेकिन उसको जब हम देखते हैं और गुड मॉर्निंग कहते ही हमारी एक बहुत शुभ शुरुआत हो जाती है। तो ऐसे बहुत सारे जो है अनुभव मधुबन की भूमि से वरिष्ठ भाई बहनों के द्वारा उनके अंग संग रहने के साथ साथ हमें जीवन में मिलते रहे और वो हमारी प्रेरणाएं बन गए, हमारे जीवन की वो यादगार पल बन गए। कि ऐसे कुछ दीपक जले, ऐसे कुछ दीपक जले जो यादगार बन गए, कुछ ऐसे दीप भी जले जो इतिहास बन गए, कुछ ऐसे दीप बने जो स्नेह और निश्चल ईश्वर प्रभु के दिल के हमारे मोती बन गए। तो ऐसे ही यादें मधुर मोती सुनहरी जिसको कहें कि यादगार क्षण, हम आपसे इसी प्रकार से शेयर करते रहेंगे। ओम शांति।